शांति। आज बत्ती के शुभारंभ में ही हमारे बीच आदरणीय सूरज भाई उपस्थित हैं। हम एक हाथ की ताली से आपका बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सभी सूरज भाई को भली भांति जानते हैं। विशेष आपके दिए हुए समाधान देश और विदेश में सभी बहुत सम्मान के साथ सुनते हैं। आपकी बरसों की तपस्या और जो एक चीज जिसने मुझे हमेशा अपील किया है कि बाबा हमेशा कहते थे कि भोजन बनाने के लिए मुझे मेरे योगी बच्चे चाहिए, और इतनी स्किल्स होने के बाद आपने बाबा के उस डिपार्टमेंट को चूज किया जिसमें सचमुच किसी गहन तपस्या से संपन्न आत्मा की आवश्यकता थी। इस डिपार्टमेंट को इतना सुचारू संभालते हुए आज हम सबके जीवन में भी वो योग की गहराइयों को हम कैसे छू सके, आपके पास इसका सबसे अच्छा मार्गदर्शन है। मैं आज आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि हमारी अलर्ट स्थिति के द्वारा, अभी भी कईयों का अनुभव होगा हम योग में बैठते हैं, ज्ञान सुनने में तो अलर्ट फिर भी रह सकते हैं, लेकिन योग में अगर थोड़ा लंबा समय बैठते हैं तो बड़ा सहज ढल जाते हैं। तो हम जब भी बाबा के पास बैठें, जागती ज्योत वाली स्थिति में कैसे बैठ सके, अलर्ट स्थिति में कैसे रहें, और अलर्ट स्थिति के द्वारा हम वरदानों की अनुभूति कैसे करें, इस विषय पर अपना अनुभव युक्त मार्गदर्शन प्रदान करेंगे आदरणीय सूरज भाई।
ओम शांति। पहले तो बता दूं कि डिपार्टमेंट मैंने नहीं चुना था, भगवान ने चुन के रखा था हमारे लिए, क्योंकि हमने तो कभी किचन देखा भी नहीं था कैसे खाना बनता है। जब मुझे टॉपिक दिया गया तो मुझे भी याद आ रही थी कुछ बातें, टॉपिक तो अभी दिया था, मैंने पूछा कि कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक देते नहीं और जब मैं क्लास करा देता हूँ तब बहनें कहती हैं भाई जी टॉपिक तो कुछ और था। लेकिन बहनें भी सोचती होंगी मैं बिना बताए समझ लेता हूँ, लेकिन बताना तो पड़ता ही है। तो मुझे याद आ रहा था, बाबा से वरदान मिलते हैं, मुझे कैसे मिले और क्या क्या मिले याद आ रहा था। मैं पूछना चाहूंगा आप में से किस किस को बाबा से वरदान मिले हैं? अच्छा, किस किस को नहीं मिले आज दिला दें? नहीं, लज्जा से हाथ नहीं उठाते अभी। भगवान वरदान उनको देता है जिन पर वो राजी हो जाता है। कुछ आत्माओं को उसकी ओर से वरदान मिलते हैं और कुछ आत्माएं अपनी मेहनत से वरदान लेती हैं उनसे। अगर वो हम पे राजी हो जाए तो उसका सब कुछ हमारे लिए। अब राजी करना हम सबके हाथ में है। कैसे होता है भगवान राजी बताओ? सच्चे दिल पर साहब राजी। वो सच्चाई क्या है? पाप करो और भगवान को सुना दो। और कई लोग ऐसा ही समझते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये भूल गया था कि कहाँ का ग्रुप है, आप चारों को देखा तो मैंने कहा आप तो घर दर छोड़ के चारों ही आ जाते हैं, आपसे तो भगवान राजी है ही। कई लोग ऐसा ही समझते हैं जो कुछ करो बाबा को सुना दो भगवान राजी, ऐसा नहीं। संपूर्ण सत्यता है, संपूर्ण प्योरिटी, और वो जब बाबा साकार में थे तब कहते थे, छोटा परिवार था 20-25 लोग, यहाँ भाई जो कुछ गलती करो बाबा को सुनाओ आके, और कोई ऐसी गलती जो मन को खा रही हो बाबा को सुनाने से मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, बाकी सच्चाई सत्यता अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना सत्यता संपूर्ण पवित्रता में है। तो हमें भगवान को राजी करना है। कैसे होता है राजी वो? दूसरी बात, माताओं से कैसे होता है और कुछ बता दो, वो जरा बड़ी बात है, लोग सुन के डर जाते हैं। कई माताओं पे भगवान राजी रहता है, मैं देखता हूँ उन्हें, और उन माताओं को देखकर चिंतन के लिए बाध्य होना पड़ता है कि भगवान इनसे भी राजी है। और उसका कारण है उनका भोलापन और केवल तू, एक ही शब्द रहता है, बाबा साथ है, बाबा बैठा है, और उनकी गाड़ी पार होती जाती है। और बहुत बुद्धिमान सोचते ही रहते हैं बाबा बैठा तो है, और बैठा ही रहे तो हम क्या करेंगे। बुद्धिमान लोग ज्यादा सोचते हैं, बैठा तो है, साथ तो है, पर पता नहीं मदद करेगा भी या नहीं, हमने तो बाबा क्या इतनी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, क्या होगा। और जो भोली माताएं हैं वो सोचते नहीं, बाबा है वो सब कुछ कर देगा, समर्पित, और भगवान को भी बोलो विवश होना पड़ता है कि ये तो हटती नहीं मेरे द्वार से, अब तो करना ही पड़ेगा। ये भी सत्य है। और किन पे राजी होता है भगवान? जो उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं, मुरलियों पे ध्यान दें, जो सुखदाई हैं, जो सच्चे दिल से निष्काम भाव से सेवाओं में हैं, कुर्बानी जिनमें है, उन पर भगवान राजी होता है। बाकी सूक्ष्म बात ये है, जिनके पास बहुत प्योरिटी है, जो बहुत योगयुक्त हैं, वो तो वरदानों के अधिकारी हैं। हमें जिन जिन वरदानों की जरूरत है, यूं तो बाबा का हर महावाक्य ही हमारे लिए वरदान है, पर जिन वरदानों की हमें बहुत जरूरत है और जरूरत पड़ेगी, उन पे आप ध्यान दें जरा। आने वाले समय में हमें संसार को विघ्नों से मुक्त करना है। और बाबा के कुछ बच्चे ऐसे तैयार हो जाएंगे कि जो एक स्थान पर बैठकर संसार के विघ्नों को हरें, एक ये वरदान चाहिए बड़ा है। दूसरा, बाबा कहते आए कि अब के तुम्हारे दुख तो चींटी के समान हैं, संसार में दुखों के पहाड़ टूटने वाले हैं। ऐसा वरदान कि मैं मास्टर दुख हरता हूँ, जिसको हम दृष्टि दें, जहां तक हमारे वाइब्रेशन फैलें, सब दुखों से मुक्त हो जाएं। तीसरा वरदान सफलता का, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। ये तीन तो हैं बहुत इम्पोर्टेंट, चौथा भी इम्पोर्टेंट है, सबको मुक्ति देने का, मास्टर मुक्तिदाता बनने का। पांचवा वरदान, अब पांचवा आपको सुनाना है, बोलो। एक बड़ा वरदान और है, माया जी जगजीत, ये तो रोज के हैं। एक पांचवा वरदान मैं सुनाता हूं आपको, मैं कहीं कहीं क्लासेज में सुनाया है। बाबा ने 74 में राखी के दिन अपने एक मैसेज में ये बात कही थी, डॉक्टर सभी ध्यान से सुन लेंगे। ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे सामने रोगियों की भीड़ होगी और तुम एक साथ उन पर दृष्टि डालोगे और वो रोग मुक्त हो जाएंगे। तो प्योर एनर्जी विल बिकम हीलिंग एनर्जी। और डॉक्टरों को तो मैं कहता हूं अब ऐसा बन जाएं कि पेशेंट आए, दृष्टि दें, संकल्प करें, सिर पे हाथ रख दें और ठीक होके जाएं। ये पांचवा वरदान। लेकिन इसके लिए बाबा ने कंडीशन दी, ये काम वही कर सकेंगे जो संपूर्ण निर्विकारी होंगे, व्यर्थ से भी मुक्त। ये नहीं हम पवित्र तो बहुत हैं और दो चार घंटे रोज व्यर्थ चिंतन में बातों में बिता देते हैं। ऐसी आत्माओं के पास प्योरिटी का बल नहीं रहता। प्योरिटी रहती है पर उसका बल नहीं रहता। जैसे बल्ब जल रहा हो पर उसकी लाइट न फैल रही हो, बस बल्ब जल रहा है। अब वरदानों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सबको वो बातें नोट डाउन करनी हैं और उन पर काम करना है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, वरदानों को धारण करने की शक्ति उनकी ही बुद्धि में आती है जो लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं। वरदानों को धारण करने की शक्ति उनकी बुद्धि में ही आती है जो लंबा समय किसमें ईश्वरीय नशे में रहते हैं। वरदान है ना, भारी चीज है। वो बुद्धि में धारण हो तो बुद्धि भी सक्षम होनी चाहिए ना। ये बहुत सुंदर बात बाबा ने कभी कही। और दूसरी बात जो बहुत बल देगी हम सबको, वरदानों में शक्ति है आग को पानी में बदलने की। समझ गए ना इसका अर्थ? आग जैसी भयानक परिस्थिति हो, पानी जैसी बहने वाली, चली जाने वाली, शीतल तुरंत हो जाएगी। तो ये दो बातें बहुत याद रखेंगे। तीसरी बात, उसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। अब बाबा ने कहा अमृत वेले बाप से वरदान लो और दिन में उसका प्रयोग करके अनुभव करो। दिन में उसको स्मृति में लाएं, उसका प्रयोग करें और उसके सुंदर अनुभव प्राप्त करें। अब देखिए, हमने बाबा से सवेरे मान लो वरदान ले लिया, विघ्न विनाशक भव। अब कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, अपने विघ्न आपको बताता है, अब आप याद करेंगे कि मुझे बाबा का वरदान प्राप्त है। अब उसको दृष्टि देंगे और संकल्प करेंगे ये आत्मा इस विघ्न से मुक्त हो जाए। रिजल्ट देखेंगे, बहुत गुड रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसी को सफलता नहीं मिल रही, सवेरे आपने सफलता का वरदान ले लिया, आपका बच्चा ही है, उसके सिर पे हाथ रख दो, संकल्प करो मुझे ये वरदान प्राप्त है, आज इसे इस कार्य में सफलता प्राप्त हो, गुड रिजल्ट मिल जाएगा। अब कैसे ये वरदान लेना है, इसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस योग की रोज करनी है। एक पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पांच स्वरूपों का अभ्यास हमारी संपूर्ण साधनाओं के लिए बहुत बहुत सहायक है। मन इससे आनंदित होगा, बुद्धि एकाग्र होगी। जानते हैं ना सभी पांच स्वरूपों को, सभी जानते हैं ना, लेकिन इसकी प्रैक्टिस ब्राह्मण परिवार में बहुत कम है, क्योंकि बाबा के शब्दों में रोज मुरलियों में स्वदर्शन चक्रधारी बनो, ये पांचों स्वरूप स्वदर्शन चक्र ही तो है ना, स्मृति स्वरूप है ये। देखो मुझे कैसे कैसे बाबा की सुंदर बातों की डेप्थ समझ में आई इसी हॉल में, यहाँ बाबा आए अव्यक्त बाबा, ये स्टेज नहीं होती थी। बाबा को जूस दिया गया पीने को, तब जूस देते थे, बाबा लंबा समय नहीं रहते थे, इतना ही जितना आजकल रहते हैं, थोड़ा इससे ज्यादा, क्योंकि 6 बजे दादी आ जाती थी, 6:30 तक बाबा आ जाते थे और 10:30-11 प्रोग्राम पूरा हो जाता था। बाबा को जूस दिया गया, आपने सुनी होगी, मैं ये बात सुनाता हूँ। तो पास में बैठी थी श्री इंदिरा दादी, एक कोई भी बैठा रहता था जो पार्टियों को मिलाएंगे, बाबा ऐसे मिलते थे, ग्रुप आएगा पूरा, ग्रुप से बात करेंगे, फिर एक एक आएगा, उसको टोली देंगे, उसको कुछ कहेंगे, ये मिलन की रीति थी। तो अगर 10 लोग मिलने वाले हैं तो कम से कम 15 मिनट बाबा एक एक पार्टी को देते थे। तो बाबा को जूस दिया गया, सील इंदिरा दादी को आप जानते होंगे, बुब्बे की थी वो, बाबा से बहुत क्लोज, घुली मिली, लौकिक रिलेटिव भी। तो बाबा ने जूस को दृष्टि दी, उसने तुरंत पूछा, बाबा आप किसे याद कर रहे हो? वो ऐसे ही थी जैसे बाप बच्चे होते हैं ना घर में, तो फिर बाबा आप किसे याद कर रहे हो, ऐसे इतनी स्पीड से पूछा। तो बाबा ने, अब शिव बाबा ने उत्तर दिया, इसे अब किसी को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्मृति स्वरूप हो चुका है। गीता के भी यही महावाक्य है लास्ट, स्मृति लब्धा नष्टो मोहा, बहुत सुंदर वो बातें हैं। हम भी स्मृति स्वरूप हो जाएं तो फिर योग लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, हम योग युक्त हो जाएंगे। और स्मृति स्वरूप होने का सर्वोत्तम सरल सहज तरीका है पांच स्वरूपों का अभ्यास। सब उस पे ध्यान दें, इस भट्टी में भी कोई भी योग कराने आए तो कहना के बहने कहें कि पांच स्वरूपों का अभ्यास विद कमेंट्री करा दें आपको, तो बहुत अच्छा अनुभव रहेगा और सभी सीख भी लेंगे। मैं थोड़े में इतना ही बता दूं, आत्मिक स्वरूप ये हूं मैं, ये संकल्प आप हर बार देंगे, ये हूं मैं, ये नहीं, ये देह नहीं, ये हूं मैं। फिर अपने देव स्वरूप को देखेंगे बिल्कुल सामने, शुरू में केवल अपने देव स्वरूप को देखेंगे और संकल्प देंगे ये हूं मैं, फिर धीरे धीरे अनुभव होगा कि मैं ही वहां हूं। फिर अपना पूज्य स्वरूप देखेंगे जो आप निश्चित करें, फिर वही संकल्प देना ये हूं मैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए तो बहुत नशा हो सकता है, क्या क्या पाया इस जीवन में, क्या क्या देखा, कौन हमारा साथी बन गया। फिर फरिश्ता अपना स्वरूप देखें, चमकती ड्रेस, चमकीली ड्रेस में, फिर वही संकल्प दें ये हूं मैं, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। हर एक को विजुअलाइज करना, उस स्वरूप को देखना और उसके बारे में चिंतन करना। वरदान के लिए एक अभ्यास बहुत सुंदर है, और योग के लिए भी और जीवन में मैं तो कहूंगा अतिंद्रिय सुखों के रोज के अनुभवों के लिए, रोज कम से कम एक बार ये प्रैक्टिस हम करेंगे और बाबा से मिलन का अनुभव करेंगे। प्रैक्टिस क्या है कि हम चलेंगे सूक्ष्म लोक में, चलेंगे कैसे बोलो, कैसे चलेंगे? हाँ, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना देना, कैसे चलें, फरिश्ते की ड्रेस पहने, फिर उड़ के से निकल के चलें, इतना भारी नहीं, बस जैसे मैं आपको कहूँ यहाँ बैठे हैं, जाके अपने सेंटर में बाबा के रूम में बैठो। कितनी देर में बैठेंगे या सोचेंगे कब चमकीली ड्रेस पहन लें, अभ्यास करें, मैं आत्मा निकल रही हूँ वहां जा रही हूँ, नहीं सोचेंगे ना। ये मैंने उदाहरण दिया आपको ताकि आप इसको बाहर ही न कर लें। यहाँ वहां सेकंड में सूक्ष्म लोक दिखने लगा, सफेद प्रकाश आकाश के ऊपर, और फिर अभ्यास करेंगे, सामने बाप दादा हैं। अब जो अभ्यास करेंगे उसको हम करेंगे। चलो रेड लाइट, बिल्कुल मग्न होकर सभी एक सेकंड में फील करें अपने को आकाश के ऊपर। ये सूक्ष्म लोक फरिश्तों की दुनिया, सामने खड़े हैं बाप दादा। बिल्कुल क्लियर देखें बाप दादा को, बाबा के अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। मस्तक में महाज्योति चमक रही है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपनी हजार भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। हाथ से बड़े आनंदकारी वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। मस्तक पर तिलक लगाया, और वरदान दिया, बच्चे विघ्न विनाशक भव। सफलता मूर्त भाव, श्रेष्ठ योगी भाव, बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और हम वापिस ओम शांति। ये बहुत अच्छी अनुभूति देगा। पसंद है, कई आप में से करते होंगे, बहुत अच्छा, बाबा की समीपता फील होने लगेगी। और रोज हम उससे मिलते हैं, रोज हम उसकी दृष्टि लेते हैं, और जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं उन्हें इसमें एक चीज जोड़ देनी है, बाबा का महावाक्य, रोज बाप से दृष्टि लो और संसार को दो। हमारी दृष्टि कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, हमारी दृष्टि से जग का कल्याण होता है। जो श्रेष्ठ योगी हैं, अगर वो ये संकल्प करके कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, संसार को दृष्टि देंगे तो संसार का कल्याण होने लगेगा। अगर इस वरदान को याद करके कि मैं विघ्न विनाशक हूँ, संसार को दृष्टि देंगे तो अनेक आत्माएं विघ्नों से मुक्त होने लगेंगी। तो इसका बड़ा महत्व है, उसको समझकर बहुत अच्छा पुरुषार्थ ये रोज करना है। दो बार करें तो बहुत अच्छा, तो एक 500 रुपयों का अभ्यास, एक ये प्रभु मिलन, और तीसरा अभ्यास करना है बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ कि रोज 5 बार बाप दादा का आह्वान करें और फील करें कि हमारे बुलाते ही बाबा आ गए, बाप दादा दोनों। फिर यही अभ्यास करें जो सूक्ष्म वतन में किया, आ गए बाबा, 1000 भुजाएं सिर के ऊपर फैला दी, सिर पे हाथ रख दिया, वरदान दिया, दृष्टि दी। ये अनुभव बहुत सुखद और बहुत सुंदर रहेगा। अब ऐसा करना होगा कि कोई एक वरदान 7 दिन तक लगातार ले लें सवेरे, और उस वरदान का फुल नशा हो जाए, कॉन्फिडेंस हो जाए कि मुझे ये वरदान प्राप्त है। वाचा की सिद्धि का भी वरदान होता है, संकल्प सिद्धि का भी वरदान होता है, बहुत बड़ा है। जो नशा हो जाए मेरे पास ये वरदान प्राप्त है, जितना नशा फिर उसकी स्मृति उतना ही वो वरदान फलीभूत होगा। ये बात बाबा ने बहुत पहले बता दी है, कभी ये लहर चली बाबा की उनसे वरदान लेने की। आप कोई भी वरदान ले सकते हैं, संपूर्ण पवित्र भव, श्रेष्ठ योगी भव, माया जीत भव, स्थिर बुद्धि भव, शांति सुख, सुख शांति प्रेम से भरपूर भव, ये वरदान है, ये ले सकते हैं। दिव्य बुद्धि संपन्न भव, बाबा ने ये बता दिया है कि सवेरे बाबा क्या बनकर बैठता है, भोला नाथ। आप वो मुरली पढ़ सकते हैं, 77-78 मुरली है ये उस सीजन की, जिसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, सवेरे बाप भोला नाथ बनकर बैठता है, उसे रिझा सकते हो, उसे मना सकते हो, उसे अपनी भूले क्षमा करा सकते हो, उससे 8 की माला में आने का वरदान ले सकते हो, 108 की माला में आने का वरदान ले सकते हो, सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है, तुम पहुंचो। अब ये काम पहुंचने वालों का है, किसी को रजाई नहीं छोड़ती, किसी को बेड नहीं छोड़ती, किसी को आजकल एसी नहीं छोड़ती होगी, बाहर तो बहुत गर्मी है, एसी में सोए रहो। सोच लें आप सवेरे का क्या क्या हाल है, कैसा कैसा हाल है, खुशहाल या बुरा हाल, चुप है माना बीच का हाल। सवेरे बाबा बहुत कुछ देता है। और सबसे बड़ी अनुभूति क्या होती है सवेरे, बोलो जिनको है, आनंद से मन भरपूर और इससे चित्त होता है शांत एकाग्र। इसलिए सवेरे उठकर पांच स्वरूपों के अभ्यास से आप अपनी साधना प्रारंभ करेंगे, बाबा से बहुत अच्छी बातें भी करें जो हम बाबा के पास पहुंचे, अब इसमें दो एडिशन और कर लें, बाबा से बहुत अच्छी बातें करें और बाबा के साथ बताओ खेलें रास करें, तो वो मिलन और आनंदकारी हो जाएगा। एक छोटी सी चीज है तो प्रारंभिक, लेकिन मैं आपके सामने और रख देता हूं, क्योंकि हमारा योग ऐसा है कि कोई भी अभ्यास हम चाहे जब भी करें उसकी आनंदकारी अनुभूति होती ही है। आत्मविमानी होने की एक छोटी सी प्रैक्टिस सभी और किया करें, और रोज एक बार कर लिया करें बस, लेकिन 10-15 मिनट। क्या मैं आत्मा हूं, ये तो हम प्रैक्टिस करते ही हैं। अब आत्मा के सातों गुणों को इस तरह प्रैक्टिस में लाएंगे, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, लेकिन आप सब जानते हैं कोई भी एक शब्द कोई भी एक वाक्य अगर हम 10-20 साल से कहते आ रहे हो तो फिर उसमें कोई रस नहीं रहता, मन उसमें बोर फील करने लगता है। तो ऐसा करेंगे, मैं आत्मा बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं हर जन्म में बहुत सुखी रही, बाबा आपने आकर मुझे बहुत सुख दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। एक एक में ऐसा देंगे टाइम, फिर गुड फीलिंग कि मुझसे सुखों की किरणें फैल रही हैं। फिर दूसरा ले लें, मैं आत्मा शांत हूं। अब जैसा आप जानते हैं बहुत अभ्यास करने वाले 10-20 साल से रोज कहते रहते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, पर कुछ होता नहीं। अब हमें इसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है। कैसे, मैं आत्मा शांत हूं, मैं बहुत शांत हूं, मेरे पास शांति की अनंत शक्ति है, मेरा चित्त पूरी तरह शांत हो गया है, बाबा आपने मुझे शांत कर दिया, विकारों की गर्मी भी शांत कर दी, आपको बारंबार शुक्रिया। 3 मिनट भी लगा सकते हैं, फिर वही देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे आत्मा से शांति की किरणें ब्रेन को जा रही हैं। क्लियर है ना, ऐसे प्योरिटी ज्ञान प्रेम, ये नहीं मैं प्रेम स्वरूप हूं, मेरे चित्त में सभी आत्माओं के लिए बहुत प्रेम है, मेरा प्यार का भंडार भरपूर है, मैं सारे संसार को प्यार बांट सकती हूं, ऐसे संकल्प करेंगे तो वही चीजें जीवन में आने लगेंगी। अभी हमें ये चीजें जीवन में लानी है, आत्मविमानी होना है। आत्मविमानी का अर्थ है आत्मा के सातों गुण हमारे जीवन में आ जाएं। अगर हम रोज कहते रहें मैं तो प्रेम स्वरूप हूं लेकिन व्यवहार में प्यार झलकता न हो तो कोई फायदा नहीं होगा, हमें सोल कॉन्शियस होना है। तो सभी अपने योग के चार्ट को बहुत अच्छा बढ़ाएंगे, फिर वहीं आ जाएं, बाबा हम पे राजी हो जाए, करना है ना राजी, हम भगवान को ऐसा बांध दें कैसा, जो द्वापर युग के बाद भी जब हम उसे याद करें हमारी सुनवाई हो जाए, हमें ऐसा न लगे भगवान सुनता नहीं है। लगता है ना भक्ति में बहुतों को, हम तो बहुत पुकारते हैं, भक्ति करते हैं, सुनता नहीं है, हमारी फटाफट सुनवाई हो, और ये किसकी होगी? भाई उत्तर देंगे, किसकी सुनवाई होगी बाबा के पास द्वापर युग से, जब वो इस धरा पर आया, जिसने उसकी सुनी सुनेगा, बांध लें, बांधेंगी माताएं उसको, अपनापन बहुत कर लें बाबा से, बहुत अपनापन। आजकल बहुत युवकों के बीच में मन में एक निगेटिव फीलिंग बढ़ती जा रही है, युवक भी तो बहुत बैठे होंगे ना क्लास में, कुछ तो आगे वाले मुझे दिख रहे हैं, माया बहुत प्रकोप में है आजकल, तो रोज एक दो प्रश्न ऐसे आते हैं, हमें बहुत लोनली फीलिंग होती है, अकेलापन, बहुत अकेलापन फील होता है, और फिर परेशान होके क्या कह देते हैं, ऐसा लगता है संसार में हमारा कोई नहीं। मैं पूछता हूँ, ज्ञान लिया है? लिया है। पांच साल हो गए ज्ञान लिया है, आज भी सवेरे एक का ऐसा फोन, मैं सवेरे ही फोन खोलता हूँ, केवल 8 से 9, सारा जनरल तो नहीं खोल सकते, नहीं तो वो भी इतना चला कि नाश्ता मैं नहीं कर पाया, तो रोए रोए एक बहन, मैं एमएससी कर रही हूँ, मन बहुत भटक रहा है, फाइनल है मेरा, मेरे माँ बाप को मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं भी चाहती हूँ, इस अब आगे का जीवन तो इस पे निर्भर करेगा। फिर मैंने कहा हुआ क्या, फिर वो आगे कहानी सुना दी सारी, मुझे छुड़ाओ इससे। मैंने कहा बांधा तुमने खुद को, छुड़ाने हम आ जाए। मैंने बताई भी दी, अगर छूटना चाहती हो तो ऐसे छूट जाओ, एक सेकंड का काम है। फिर उसको मैंने समझाया अच्छी तरह, ऐसे केसेज में मैं टाइम देता हूँ। फिर मैंने कहा अरे तुम समझो, तुम एमएससी फाइनल में हो, अब तुम्हारा ये समय और ये जीवन कितना इम्पोर्टेंट है, अब जहाँ तुम उलझ गई हो उसकी तो वैल्यू ही नहीं है, वो तो धोखा है, धोखा होगा, चीटिंग होगी पूरी, तुम समझ जाओ। बता दो क्या होता है डॉक्टर साहब, आप सबको पता तो है, उसने भी किसी से प्यार किया था, अब उसको पता चला कि उसका तो 3 से और प्यार है, मर गए। अब इसको न नींद आती है न पढ़ाई में मारे। मैंने कहा प्यार एमएससी करने के बाद कर लेना, अभी छोड़ दो। मैंने पूछा ज्ञान में भी चलती हो? 5 साल से चलती हूँ। मैंने कहा इसलिए गड़बड़ हुई है, तुमने भगवान की बात नहीं मानी। फिर मैं पूछा आज की मुरली सुनी? आज ही तो था सर्व संबंध। कहा हाँ सुनी है। मैंने कहा फिर क्या हुआ सुन के? कि मुझे लगा तो सही मैंने कुछ गलती कर दी है। अब देखो युवक कितने डिप्रेशन में आते हैं, ये ऐसी माया बन गई है ये तो है। फिर मैंने उसे जब वो ठीक ठाक हो गई हंसने लगी, फिर कहा ये सजा इस चीज की मिलती है युवकों को। उसने क्या कहा कि मैं ऐसा चाहती हूँ और किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। मैंने कहा लड़कियों के साथ तो करोड़ों के हो रहा है, वो तो हमें पता, आप लोगों को थोड़ा ही बताते हैं, वो हमें तो खोल के बता देते हैं, क्योंकि हम फोन पे किससे पूछते नहीं, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से बोल रही हो, कुछ नहीं। इससे मैंने नहीं पूछा तुम कहाँ से हो, क्या ये पूछने से हमें क्या लेना, इनकी समस्या हल हो जानी चाहिए। मैंने कहा सजा है कि भारत वालों ने भारत की महान कल्चर को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर स्वीकार की, ये उसकी सजा है। और प्राय सब केसेज में हो रहा है, सर्वे हुआ पीछे, 90% लव मैरिज फेल, 10% वाले भी लड़ते ही रहते हैं सदा। इसलिए अपने बच्चों को सभी अच्छे संस्कार देंगे, फिर से आ जाएं, भगवान को हमें राजी करना है। तो मैं आपको कह रहा था वो मेरा है, ये फीलिंग बहुत बढ़ानी है। बात सूक्ष्म है और टाइम लेती है, लेकिन इसको बहुत बढ़ाना है, सुंदर अनुभवों में लाना है। बाबा मेरा है और मैं आपको कहूंगा अपनी भट्टी में आप एक छोटा सा प्लान बनाना। मैं तो आज रात्रि क्लास है यही मधुबन में, सबसे बनवाऊंगा ये प्लान यहाँ वालों से, किस बाबा के 8 संबंध हैं हमसे, 8ों संबंधों को सारा दिन एक ही संबंध एक कर्म में, दूसरा संबंध दूसरे कर्म में, तो किस कर्म में कौन सा संबंध हम याद करें, केवल याद करना पहले, अनुभव की बात आगे, चिंतन की बात आगे, क्योंकि आज की मुरली में सबसे गुह्य बात थी, नहीं कुछ और शब्द आपने कैच की हो, संबंधों के सहयोग से निरंतर योग की स्थिति को, यह है बहुत गुह्य बात, संबंधों का सहयोग बहुत ही अच्छी बात होती है। देखो मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं, मैं करता रहता हूं ये, कभी शरीर में कुछ हो गया, कभी सदा ही डॉक्टरों के पास जाएं, गोली खाते रहें, ये तो मैं तो नहीं करता हूं कि भाई छोटी चीज हो गई चलो डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा घुटने में गोली दे दो, चलो खाली गोली दर्द हो गया। अब मैं क्या करता हूं, बाबा को यूज करता हूं, बाबा कौन सा संबंध यूज करेंगे इसमें, आप सुप्रीम सर्जन हो और मैं आपका बच्चा, एक सुप्रीम सर्जन का बच्चा और उसको दर्द हो रहा है, जल्दी ठीक करो, बस फटाफट ठीक होता है, बहुत अच्छे अनुभव इसके होते हैं मुझे, तो सारी बात खत्म हो जाती है ना वहीं, नहीं तो उसमें टाइम लगाओ, कई बातें, कितना समय जाएगा, योग भी टूटेगा। ऐसे सर्व संबंधों के सहयोग से जीवन की समस्याओं को हल करें और बहुत सारी मिसिंग जो लौकिक में होती हैं, मिसिंग अभाव रहता है, उसको पूर्ण करें, तब ये लगेगा नहीं कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि हम सभी के सामने आने वाले समय की स्पष्ट झलक होनी चाहिए, स्पष्ट। ऐसा समय हरेक के पास आएगा कि हर व्यक्ति अकेला हो जाएगा, ये ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है, साथ होंगे उसके पुण्य कर्म, साथ होगी उसकी श्रेष्ठ स्थिति, साथ देगी उसकी प्योरिटी, साथ देगा बाबा अगर लिया होगा तो। हर एक आत्मा को अकेला होना है, ये बाबा के शब्द हैं, हर आत्मा निराधार हो जाएगी, जो भी आधार हैं सब निकल जाएंगे, ऐसे में अच्छी स्थिति में रहना लंबे काल का अभ्यास चाहिए। तो सभी आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए अब अपने पुरुषार्थ की स्पीड को बहुत तेज करें, और आप यहाँ मधुबन में रहकर 3 दिन गहन चिंतन करके अपना प्लान बनाना कि जो पुरुषार्थ हम अब कर रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा किया जा सकता है, यही शब्द याद रखना, करना है वो नहीं, 4 गुना पुरुषार्थ हर व्यक्ति कर सकता है, वहीं रहते हुए जहां हैं वही काम करते हुए जो कर रहे हैं, केवल सुंदर प्लानिंग की जरूरत है, क्योंकि खेल अब समाप्ति की ओर है, बिल्कुल ओपन है सब कुछ, साकार पाठ का पहला फेज पूरा हो गया था, अव्यक्त पाठ का दूसरा लंबा फेज भी पूरा होने को है, अब बस लगभग बाबा की दृष्टि चलेगी, थोड़ा बहुत बोलेगा बाबा अन्यथा दृष्टि रहेगी। अब शुरू होगा 3रा फेज, कौन सा होगा वो, प्रत्यक्षता, जय जयकार, और जय जयकार में पहले जय जयकार होती है किनकी, अष्टरत्नों की, फिर 100 की, उनके द्वारा बाबा से जुड़ेंगे सभी, लेकिन इस तीसरे फेज और सेकंड फेज के बीच में सभी ब्राह्मणों को एक अच्छी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। आप सोचते होंगे मैं ये कहां से बता रहा हूं, कईयों के मन में उठता होगा कि मैं ऐसे ही बताता रहता हूं, डराता रहता हूं लोगों को। इसमें डराने की बात नहीं, एग्जाम आ रहा है, बच्चों को डेट बता दी जाती है, इस दिन से होगा, डराया थोड़ा जाता है भाई, अब एक मास बचा, तैयारी करो। जैसे पहला फेज एक और था, साकार पाठ मुरलियों से पहला, सेवाओं से पहला, जब 14 साल सभी भट्टी में रहे और सेवाएं शुरू हुई, उसके बीच में क्या हुआ था, बैगरी पार्ट। बैगरी पार्ट बहुत जरूरी था, आबू में ही हुआ था वो, बाबा चाहता तो हीरो की बरसात करा सकता था, बाबा के लिए सब चुटकी का खेल है, वो चाहे सोने हीरो की बरसात करा दे, लेकिन उसे क्या करना था, अच्छी आत्माओं को सेवा पर भेजना था, कच्चों को नहीं। अब थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, 380 में से 280 चले गए थे, 100 बचे थे, अगर उन 280 को भी सेवा पे भेज देते और वो वहां जाके शादी कर लेते तो क्या होता, डिसर्विस, नहीं यज्ञ चलता ही नहीं आगे, टूट जाता। किसी भी कार्य की बिगनिंग में ही ऐसा हो जाए, खेल खत्म। इसलिए बैगरी पाठ चला ताकि कच्चे मोह वाले जिनके अंदर वासनाएं बहुत हैं वो सब निकल जाएं। बाबा को बहुत लाखों करोड़ों आत्माओं की जरूरत नहीं होती, बाबा को जरूरत होती है स्ट्रांग आत्माओं की। आपने बात सुनी है, बाबा को जब पूछा करते थे सिंध में, लोग कहते थे कि बाबा आप अगर ये प्योरिटी की बात छोड़ दो तो हम सब आपके साथ हो जाएंगे, आप हमारे गुरु। बाबा क्या उत्तर देते थे, बाबा को मैं करने वाली बकरियों का झुंड नहीं चाहिए, बाबा को चाहिए शेर और शेरनी जो दहाड़े, क्योंकि उस समय विरोध बहुत था। सबसे ज्यादा विरोध हुआ आर्य समाज का दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ, अम्बाला, अमृतसर, करनाल में कम हुआ, पर इन 5-6 जगह पर बहुत हुआ, बिल्कुल वो आगे नहीं बढ़ने देते थे। आप सोचो अम्बाला में आर्य समाजियों का बहुत ज्यादा विरोध, और आर्य समाजियों के घर से 54 कन्याएं समर्पित हुई, ये बकरियों का काम था या शेरों का, सोच लो आप, भयानक विरोध, यानी बहनों को मारने के लिए तैयार, जहर खिला दो इन्हें, ये हिंदू धर्म के अपोजिट हैं, वेदों के विरुद्ध ज्ञान दे रही हैं, खत्म करो इन्हें। लेकिन वहीं से 54 रिकॉर्ड है ये, अब भी किसी सिटी से 54 आत्माएं निकली हो, दिल्ली तो अलग है वो तो बड़ा है, अम्बाला से 54, अमृतसर में भयानक विरोध था, ऐसा विरोध कि बंदूक लेकर आ जाते थे आर्य समाज। और बाबा ने निकाल दिया एक जनसंघी को, बीजेपी का नाम पहले जनसंघ था, बीजेपी 79-77 में पड़ा था, वो इतना तेज था कि उसको देखते ही आर्य समाजी पलायन कर जाते थे, सब के सब भाग जाते थे कि ये मार डालेगा, इसका कोई कुछ कर भी नहीं सकेगा, ये सब प्रभु लीला थी ना। तो हम सभी क्या बनेंगे, तो सभी बहुत स्ट्रांग हो जाएं आने वाले समय को फेस करने के लिए। और मैं आप सभी को ये एक संकल्प देना चाहता हूं, ये संकल्प मुझे 3-4 साल से हैं, कि कई माताओं के घर ऐसे बनेंगे कि लोग आपको कहेंगे हमें अपने घर में 10 मिनट बैठ जाने दो, हमारा चित शांत हो जाए, हमें अपने घर का एक गिलास पानी पिला दो, हमारे रोग ठीक हो जाएं, हमारे सिर पे हाथ रख दो, हमारे विघ्न हर लो, हमें दृष्टि दे दो, हमें दुखों से मुक्त कर दो। ये बुरा हाल संसार का होने जा रहा है। आप सोचो जिस दिन विनाश प्रारंभ हो गया क्या होगा। ये धरती खाली होनी है ना, विनाश माना देवताओं के लिए ये धरा खाली हो जाएगी। किसके लिए? नशा बहुत है आपको तो। तो खाली हो जाएगी ये धरा, क्या हाल होगा उससे पहले। धर्मराजपुरी बन जाएगी ये धरा। इसलिए बाबा ऐसा चाहते हैं कि बाबा के अनेक बच्चे इतने योग्य योगी पावरफुल बन जाएं जो सबको सहारा दें। सोच लेना आप। इसलिए मैं इन शब्दों में कहता रहा हूं, पहले अपने को कहा बहुत, हम संसार के काम आ जाएं विनाश काल में, ये बड़ा काम हमें करना है। तैयार करें अपने को। दो ही पावर संसार की सबसे बड़ी पावर हैं, पावर ऑफ प्योरिटी, पावर ऑफ योगा। जिनके पास ये दोनों होंगी वही संसार के काम आएंगे, वही संसार में चमकेंगे, वही संसार के लिए सहारे बन जाएंगे। अब मैं लास्ट एक बात आपके सामने रख देता हूं विनाश काल की। शायद रशिया के वैज्ञानिकों को ये काम दिया गया था कि वो ये पता करें कि जब ये भूकंप आदि या फ्लड्स आदि होते हैं तो जो ये पवित्र स्थान है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सेफ रहते हैं क्यों। हालांकि नेपाल में तो अभी हुआ, मंदिर भी सब गिर गए, पशुपतिनाथ का सेफ रहा। उत्तराखंड में तो मंदिर के पास बड़ा वो पत्थर ही आ गया था, सेफ कर दिया उसको। तो वैज्ञानिकों की ये उनका निर्णय था, कंक्लूजन था कि इन स्थानों से पवित्र तरंगें फैलती हैं, विनाश के जो तरंगें आ रही हैं वो इन्हें रोक देती हैं, रिपल्स कर देती हैं, वापस भेज देती हैं। मुझे एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक ने बताई बात, तब मैंने सोचा विनाश काल में जहां पर एक बहुत बहुत पवित्र आत्मा होगी योगी, उसके वाइब्रेशंस भी विनाश की तरंगों को रोक देंगे। इसलिए विनाश में ये होगा कि जहां एक बाबा का पावरफुल बच्चा है उसके आसपास के बहुत सारे लोग भी सुरक्षित हो जाएंगे। तो हम सभी को ये बड़े बड़े कार्य करने हैं। सभी बहुत अंतर्मुखी होकर यहां अपने पुरुषार्थ की सुंदर प्लानिंग कर लेना और चेक कर लेना कहीं हम किसी छोटी बात में उलझ कर संगम युग के भाग्य बनाने के समय को वेस्ट तो नहीं कर रहे। जो उलझने हैं वो बहुत छोटी हैं और हम बहुत पावरफुल हैं। जो बातें हैं वो मूल्यहीन हैं और हमारा समय मोस्ट वैल्यूबल है। भाग्य बनाने का समय, ताकि किसी भी जन्म में सिर नीचा न करना पड़े, किसी जन्म में हाथ न फैलाना पड़े, किसी भी जन्म में भगवान से भी कुछ मांगना न पड़े, ऐसा भाग्य हम बना सकते हैं। आप सभी आए बहुत अच्छा है। यहाँ कुछ नहीं चलता था मधुबन में, हम सब मधुबन वालों ने मीटिंग की थी कि नहीं यहाँ प्रोग्राम होना चाहिए। सबको बुलाया था हमने, यहीं बैठे थे सब 50 लोग। मैंने कहा कि नहीं, ब्राह्मणों को यहाँ आना चाहिए, सबसे पवित्र और महान स्थान है ये, और खाली पड़ा है तो ये कैसे होगा। फिर एकोमोडेशन कितनों का मिल सकता है, लिस्ट निकाली। फिर मुन्नी बहन के पास गए, ऊपर गए और सबने हाँ की और ये हुआ। मजा आता है ना, यहाँ हमें बहुत मजा आता है। आप सबको देखकर हंस घूमते हैं मधुबन में, देखने वाले भी सोचते हैं ये लगते तो मनुष्य ही हैं, पर ये हैं कौन, है या नहीं, चेहरे अलग, ड्रेस भी अलग, तो बहुत खुशी की बात है। यहाँ से भरपूर होकर जाना और ये महान कार्य करना। ओम शांति।
थैंक यू आदरणीय सूरज भाई, बहुत सारी बातें आपने ऐसी बताई है जो सचमुच अंडरलाइन करने वाली हैं। और आज जबकि भट्टी का ये पहला ही क्लास है, तो ये 3 दिन के लिए प्लानिंग की बहुत अच्छी चीज और बहुत अच्छा तरीका भट्टी में सभी को मिला है। तो सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत फिर से एक बार मैं थैंक्स करती हूँ।
मस्तक पर सदा हमारे।